ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो जैसे कि प्रतिवर्ष यहां होता है बलराम जयंती और जन्माष्टमी के बीच विशेष कृष्ण कथा चलती है, कृष्ण लीला दशम स्कंद से। पिछले साल असुरवध लीला आरंभ की गई थी, कई असुरों के वध के बारे में श्रवण कीर्तन हुआ और पिछले साल की लीला की कथा समाप्त हुई अघासुर के वध से, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कई सुंदर सुंदर लीलाएं किए, उनका वर्णन इस वर्ष से होना है। लेकिन इस साल केवल एक ही लीला का वर्णन करेंगे और वो है ब्रह्म विमोहन लीला। वैसे एक लीला के लिए इतना समय क्यों? वैसे जितना भी समय किसी एक लीला के लिए भी लिया जाए उतना कम है, क्योंकि ये है कृष्ण लीला का स्वरूप, कृष्ण लीला के गुण कि ये भगवान की तरह अनंत है। जितना भी हम कृष्ण के लीला के बारे में वर्णन करते जाएं या कृष्ण के नाम के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनके गुणों के बारे में, इनका कोई अंत नहीं है। और जितना विस्तार में वर्णन होता है और आचार्यों के मुखारविंद से हम उनकी टीका सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस लीला को समझा है, तो फिर ये लीला का रस बढ़ जाता है। शुक मुखात अमृत द्रव रस संमितम पिबत भागवतम रसम आलयम अहोर मुहु रसिका भुवि भावुका। इस भागवत के शुरुआत में ही बताया गया है कि यह भागवत जो है रसिकों के लिए है। रसिक मतलब जो कृष्ण कथा का रस का पान करने के लिए योग्य है, जो समझते हैं कि कृष्ण कथा का रस का स्वाद क्या है, जो इस रस को पसंद करते हैं वही मात्र इस रस का पान करने के इच्छुक होते हैं। जिनको इस रस का स्वाद लग गया है, जिनको इस रस का स्वाद अच्छा नहीं लगता भला वो क्यों आएंगे? जिस तरह से भौतिक संसार में जिनको यहां का विकृत रस का स्वाद होता है वो शराब के अड्डे पे जाते हैं, केवल वो लोग जाते हैं जिनको उस रस का स्वाद लगा हुआ है जिह्वा पे और जो आज छूटती नहीं है। दूसरे लोग नहीं जाते, हमारे भक्त नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको कृष्ण कथा के रस का स्वाद मिल चुका है, तो यहां निम्न श्रेणी के रस का स्वाद भला वो क्यों लेने जाएंगे? उस स्वाद में उनको कड़वापन महसूस होता है, लेकिन यहां पर बहुत मधुर स्वाद, मीठा स्वाद मिलता है। तो इस तरह से ये रसिक शास्त्र है श्रीमद् भागवत। और जितना ज्यादा हम आचार्यों की टीकाओं सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर तात्पर्य लिखे हैं जिनमें उन्होंने सारे आचार्यों को टीका के सम्मिलित करके यहां पे अपने साक्षात्कार भी व्यक्त किए हैं, और आखिर कहने वाले तो सुखदेव गोस्वामी हैं और उसको दोहराने वाले सूत गोस्वामी हैं, इनके भी साक्षात्कार हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। इस तरह से कृष्ण लीला बोलने के लिए कोई समय की कमी नहीं है, पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि भौतिक संसार में रहते हैं इतना कुछ सुनना है, पढ़ना है, इसलिए ज्यादा भी समय नहीं ले सकते। इसलिए ये उचित समझा गया कि ऐसे एक ब्रह्म विमोहन लीला जैसे सुंदर लीला के लिए एक सप्ताह 8-10 दिन ही उचित रहेगा। वैसे तो 2 मिनट में भी ये लीला समाप्त की जा सकती है। संक्षेप में बता दिया लीला और लीला हो गई समाप्त, लेकिन दिनों दिन भी ये चल सकता है। एक श्लोक के ऊपर भी घंटों 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 चर्चा हो सकती है। कोई योग्य व्यक्ति बैठे तो बहुत लंबे समय तक चल सकता है। और रस तो चलता रहेगा, चलता बहता रहेगा, बहता रहेगा गंगा जी की तरह। लेकिन यहां ना तो हमारे अंदर ये पात्रता है या योग्यता है, और न ही वो ज्ञान या वो रस है, इसलिए उतना तो हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन खैर, जिस तरह से एक पक्षी आकाश में उड़ता है, जितनी उसकी क्षमता होती है, उसी तरह से हम भी थोड़ा बहुत इस अनंत कृष्ण लीला का वर्णन थोड़ा बहुत करने का प्रयास करेंगे। ये ब्रह्म वो विमोहन लीला संक्षेप में इस प्रकार है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने कुमार लीला कर रहे थे, ग्वाल बालों को साथ में लिए, वत्सों को, गाय के बछड़ों को चरा रहे थे वृंदावन के वनों में, तो उस समय ब्रह्मा जी और अन्य देवता इन सारे लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। और कई असुर आया करते थे वृंदावन में कृष्ण को मारने के इच्छुक की अभिलाषा लेकर, कंस से भेजे जाते थे। और एक बार जब अघासुर का वध किया कृष्ण भगवान ने, तो ब्रह्मा जी भी देख रहे थे, आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या वही भगवान हो सकते हैं? ये जो छोटे बालक है, ये कैसे भला भगवान हो सकते हैं? तो उन्होंने सोचा कि भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए ये समझने के लिए कि ये वास्तव में कृष्ण भगवान है, हरि है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी आए, अपने योग बल से ग्वाल बालों को और गाय के बछड़ों को चुरा लिया, उनको छुपा लिया, और वो अपने धाम में लौटकर चले गए। और जब कृष्ण को पता चला कि ब्रह्मा जी ने ऐसे कार्य किया है, तो आसानी ने भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित कर लिया ग्वाल बालों के रूप में और गाय के बछड़ों के रूप में। और ब्रह्मा जी जब उनके एक क्षण के बाद में लौटकर आए, जिस दौरान यहां पे एक पूरा साल बीत गया था, तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि गाय के बछड़े और ग्वाल बाल जैसे पहले थे, वैसे ही अभी खेल रहे हैं, चर रहे हैं, कृष्ण के साथ में हैं, बलराम के साथ में हैं। तो ये क्या अद्भुत बात है। तो उन्होंने जाके देखा कि जहां मैंने छुपाए थे ग्वाल बाल और गाय के बछड़े, वो भी वहीं पर हैं। तो ये क्या हो गया कि 2 सेट कैसे हो गए, ग्वाल बाल और गैया एक तरफ और वही ग्वाल बाल दूसरे तरफ, ये डुप्लीकेट कैसे हो गए। तो ब्रह्मा जी का सर चकरा गया। आखिर में भगवान ने उनको अपना अनंत रूप दिखाया और ब्रह्मा जी के होश ठिकाने आ गए, कृष्ण भगवान के शरण में गए। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कृपा याचना की, कृपा की ब्रह्मा जी के ऊपर। और फिर ब्रह्मा जी ने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं और स्तुतियां अर्पण की भगवान के प्रति। तो ये है ब्रह्म विमोहन लीला। तो आप फिर सोच रहे होंगे, फिर अभी 7 दिन किस लिए, लीला तो समाप्त हो गई, अभी हो गई ब्रह्म विमोहन लीला समाप्त, फिनिश। लेकिन ये तो संक्षेप में है, अभी धीरे 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 से हर एक श्लोक का, हर एक शब्द का आस्वादन लेते 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 बढ़ेंगे। अब हमें भी नहीं पता कब ये समाप्त होगा, कब कितना समय लगेगा। हमने तो टाइमिंग नहीं किया है कि ये इसके लिए इतना समय लगेगा। अब 1 सप्ताह में समाप्त हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे। तो इस तरह से हर एक श्लोक का आस्वादन लेना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि श्रीमद् भागवत का हर एक श्लोक और हर एक अक्षर रस से भरा हुआ है। रसिक व्यक्ति ही इसको समझ सकता है, परख सकता है, देख सकता है, जान सकता है कि कैसा हर एक अक्षर रस से भरा हुआ है, दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए आचार्यों ने हर एक शब्द के ऊपर टीका दिया है, हर एक शब्द को समझाया है। और वास्तव में जो भक्त इस भागवत को पढ़ना पसंद करते हैं, तात्पर्य के सहित, शब्दार्थ के सहित, वो अनुभव करते हैं कि इसका रस 10 गुना 20 गुना बढ़ जाता है। केवल जब हम पढ़ते हैं लीला, वो तो उसका स्वाद तो मधुर होता ही है, लेकिन जब श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक के हर एक शब्द को पढ़ते हैं, उस शब्द के अर्थ को पढ़ते हैं और फिर श्लोक को इस तरह से समझते हैं तात्पर्य के सहित, तो फिर रस की वृद्धि होती है। इसलिए हम धीरे धीरे से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। है कोई जल्दी आपको? नहीं ना, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में ब्रह्म विमोहन लीला सुनना ही है, ऐसा नहीं है। समाप्त हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ, और आगे देखेंगे। तो पिछले साल हम यहां रुके थे कि कंस ने इस भयंकर असुर को भेजा जिसका नाम था अघासुर। अघासुर इतना भयंकर असुर था कि देवी देवता गण भी घबराते थे, बहुत घबराते थे अघासुर से, और घबराकर वो पृथ्वी लोक पर भी नहीं आते थे और हमेशा अघासुर के मृत्यु की प्रतीक्षा करते थे। कब वो दिन आएगा जब ये भयंकर असुर, जो कि हमारे नाक में, जिसने नाक में दम पैदा कर दिया है, ये कब मर जाएगा? और जब उनको पता चला कि कृष्ण भगवान अभी अघासुर के मुख में प्रवेश कर रहे हैं ग्वाल बालों के संग में, तो बड़े चिंतित हो गए। जैसा आप जानते हैं, कृष्ण लीला का दर्शन करने के लिए सारे देवी देवता अक्सर बादलों के पीछे से होकर देखते हैं। जैसे सिनेमा थिएटर में अलग अलग सीट रहते हैं, ड्रेस सर्कल, बालकनी इत्यादि अलग अलग तरह के सीट रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसे देने से अच्छे सीट मिलते हैं नाट्य में या सिनेमा में। तो उसी तरह से जो देवी देवता हैं वो आकर उनका सीट लेते थे, उनका स्थान लेते थे बादलों के पीछे, और वहां से फिर वो दर्शन करते थे कृष्ण लीला का। कभी कभी वो वेश बदलकर वहां पे भक्तों के बीच में सम्मिलित होते थे। जैसे कि कल प्रलम्बासुर की लीला का वर्णन कर रहे थे, तो प्रलम्बासुर की लीला इतनी सुंदर थी कि देवी देवता अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने भी ग्वाल बाल का वेश लिया और वो वहां आ गए। और बताया जाता है कि उन्होंने ऐसे वेश धारण किए उन बालों के, बालकों के, जो कि उस दिन घर में थे और वहां लीला कृष्ण भगवान के साथ में वन में नहीं आए थे। उनकी भी योग शक्ति होती है, तो कभी कभी देवी देवता इस तरह से वेश बदलकर आते हैं और लीला में शामिल हो जाते हैं। कभी कभी देवी देवता गण प्रकट अपने आप को अप्रकट रूप में ही रखते हैं, अदृश्य रहते हैं। इनमें ये शक्ति रहती है, पात्रता रहती है कि पृथ्वी लोक के निवासियों से वो अदृश्य रह सकते हैं, जब चाहे अपने आप को दर्शा सकते हैं। तो कभी कभी देवता ऐसे भी लीलाओं का आस्वादन करते हैं, रस का पान करते हैं, और कभी कभी वो बादलों के पीछे छुप कर देखते हैं। ये खास तब होता है जब कोई भयंकर असुर सामने आ जाता है तो देवतागण भी घबरा जाते हैं, जब मधुर लीला होती है तो देवतागण सामने आ जाते हैं। तो इस तरह से जब कृष्ण और ग्वालबाल अघासुर के मुख में प्रवेश करने लगे तो वहां देवी देवता बादलों के पीछे से हाहाकार करने लगे, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि वो तो कृष्ण को भगवान के रूप में जानते थे, लेकिन फिर भी चिंता होती थी कि ये तो छोटे बालक है, अभी अघासुर इतना भीषण असुर है, राक्षस है, इसकी शक्ति तो अपार है, हम लोग भी इसके सामने कुछ नहीं है, और ये बालक ग्वाल बालों के संग में मुख में प्रवेश कर रहे हैं, अब क्या होगा। अभी अघासुर ने एक अजगर का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि ये असुर योग में बड़े निपुण होते हैं, इसलिए अपना रूप भी जब चाहे तब जैसे चाहे वैसे बदल सकते हैं, इसलिए इसका नाम था अघासुर। अघ मतलब जो अजगर होता है, सांप। वैसे अजगर भी बहुत बड़ा होता है, मोटा होता है, शक्तिशाली होता है, और ये जो अघासुर था 8 मील लंबा था, इतना भयंकर। और जब कृष्ण भगवान और ग्वाल बाल अंदर प्रवेश करने लगे, जब कृष्ण भगवान ने देवताओं के हाहाकार को सुन लिया, तो उस समय कृष्ण भगवान को दया आई अपने भक्तों के ऊपर। वो अपने भक्तों को कभी चिंतित नहीं देखना चाहते हैं, तो सोचे कि देवता अभी चिंता में हैं, तो कृष्ण भगवान ने बहुत सरलता से अपने आप का विस्तारित कर लिया, और जैसे विस्तार किया तो अघासुर की मृत्यु हो गई और कृष्ण भगवान और सारे ग्वाल बाल हंसते हंसते आसानी से अघासुर के मुख से बाहर आए। और उस समय अघासुर की आत्मा जो है सबके आंखों के सामने ऊपर आकाश में गई, थोड़ी देर वहां पर रही और फिर कृष्ण भगवान के शरीर में आकर लीन हो गई। और आगे चल के बताया जाता है कि फिर अघासुर को सारूपी मुक्ति प्राप्त हो गई, वैकुंठ लोकों में उनको भगवान जैसा ही एक शरीर प्राप्त हो गया जैसे कि असुरों को होता है। तो कृष्ण भगवान कितने कृपालु है देखिए। और जिस समय ये हुआ तो सारे ऊपर के लोकों में एक उत्सव की योजना हो गई। सारे देवी देवतागण बड़े हर्ष उल्लास से भगवान की स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे, शिव जी ब्रह्मा जी सारे देवी देवतागण करने लगे। और बड़ा सुंदर वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में कि किस तरह से ये उत्सव मनाया देवी देवताओं ने। वैसे देवी देवता लोग भी संगीत विद्या में बड़े निपुण होते हैं, तो उनके पास भी बड़े वाद्य होते हैं, अलग अलग तरह के वाद्य होते हैं, तो अलग अलग तरह के ढोल भी होते हैं जैसे दुंदुभी भेरी इत्यादि मृदंग। तो ये सारे देवतागण अलग अलग तरह के ढोल बजाने लगे और उनमें से जो सिद्ध हैं, सिद्ध लोगों के जो निवासी हैं उनकी पत्नियां वो भी मृदंग बजाने लगी और उनके मृदंग के साथ साथ अप्सराएं नृत्य करने लगी। और उधर गंधर्व और विद्याधर के जो पत्नियां हैं वो ऊंचे स्वर में बहुत सुंदर सुंदर गान करने लगी। उधर किन्नर जो हैं बहुत मधुर स्वर में वो गायन करने लगे और ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सारे देवी देवता गण बिल्कुल आनंद के सागर में डूब रहे थे कि कृष्ण ने अघासुर का वध किया, कृष्ण ने अघासुर का वध किया। बस सारे ब्रह्मांड में यही ध्वनि गूंज रही थी। कल्पना कीजिए कितना रम्य एक दृश्य हुआ होगा। सारे ऊपर को लोकों में सब यही बातचीत चल रही है क्योंकि ये आज की ताजा खबर थी। जैसे कोई देश कोई फुटबॉल मैच जीत लेता है, क्रिकेट मैच जीत लेता है तो सब जगह पटाखे होते हैं, सब जगह घर घर में बातचीत फोन कॉल सब लोग करने लगते हैं कि तुम जानते हो ये मैच जीत गए, ये मैच ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब जगह बात फैल जाती है, लोग सड़कों में आ जाते हैं, पटाखे लेते हैं, नाचना कूदना होता है। तो उसी तरह से ये सारे जो उत्सव हम मनाते हैं ना, ये कृष्ण लीला के संपर्क में संदर्भ में जो ऐसे उत्सव होते हैं उनका विकृत प्रतिबिंब है। तो इस तरह से ऊपर के लोकों में ऐसे गान बाजना प्रार्थनाएं स्तुतियां सब चल रही थी, बड़े धूमधाम से चल रही थी। तो इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि सभी लोग बड़े प्रसन्न थे और गंधर्व किन्नर सब लोग बड़े आनंद में थे, आनंद के सागर में डूब रहे थे। उधर शिवजी अपने डमरू बजाकर भाव विभोर हो गए थे, इतने उत्साह से वो नृत्य कर रहे थे कि उन्होंने सारे ब्रह्मांड के आवरण को छेद कर दिया। और करते करते उनके जटाओं में जो अर्धचंद्र है उस चंद्र से अमृत बहने लगा और अमृत बहते बहते उनके गले में जो उन्होंने शवों के हड्डियों के जो माला पहने हैं उस माला के ऊपर वो अमृत गिर गया। और जैसे ही वो अमृत वहां गिर गया ये सारे हड्डी क्या रहे, वो तो जीवित व्यक्ति बन गए और नाचने लगे बहुत उत्साह से शिवजी के साथ में। और सारे देवी देवता देख रहे हैं, अट्टहास हो गया उनके बीच में, जोर जोर से सब हंसने लगे ये देखकर। शिव जी को कुछ पता नहीं, वो तो भाव विभोर हो गए हैं कृष्ण लीला देखकर कि कृष्ण ने अघासुर का वध किया। इस तरह से सुंदर सुंदर वर्णन हम यहाँ पढ़ते हैं। तो सारे ब्रह्मांड में ये ऐसे फैल गया, ये फैल गई बात। तो देखिए हम देखते हैं कि भगवान का गुणगान करना ये कितनी अच्छी बात है। जो भी भगवान का गुणगान करता है वो आनंद के सागर में डूब जाता है, इसलिए सभी को भगवान का गुणगान करना चाहिए। ये मनुष्य धर्म है, मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। कई बार लोगों को जब कहा जाता है कि आप कृष्ण कथा के लिए आइए, सत्संग में आइए, तो क्या कहते हैं, जी हमारे पास इतने जिम्मेदारियां हैं, इतने कर्तव्य हैं, समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अजी आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य तो है भगवान का गुणगान करना, इसलिए आपको मनुष्य देह मिला है, गुणगान कीजिए भगवान का, इसी में हमारा आनंद है। और जो व्यक्ति ऐसे नहीं करता है वो केवल संसार का गुणगान, संसार के लोगों का गुणगान करता रहेगा। इसलिए शुरुआत में ही श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के परीक्षित महाराज बताते हैं, निवृत्त तर्षैर उपगेयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात् गौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। सुंदर श्लोक है, प्रभुपाद इस श्लोक को बहुत पसंद किया करते थे और कृष्ण बुक की शुरुआत में उन्होंने इसी श्लोक का वर्णन किया है। क्या मतलब है इस श्लोक का? निवृत्त तर्शेर, ये तृष्णा, इसलिए तृष्णा मतलब प्यास और भूख, किस चीज के लिए? इस भौतिक संसार को भोगने के लिए। तो ये भौतिक संसार के भोग की तृष्णा जिस व्यक्ति में नहीं है, जो खत्म हो चुकी है, निवृत्त तर्शेर, निवृत्त तृष्णा, वही व्यक्ति उपगीयमानात् गुणगान कर सकता है भगवान का। भवौषध श्रोत्र मनोभिरामात्, क्योंकि कृष्ण कथा जो है ये इस भव रोग के लिए उचित औषधि है। ये संसार में सबसे भयंकर रोग है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस जाना। भगवान की विस्मृति के फल स्वरूप जब हम ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं, ये सबसे भयंकर रोग माना जाता है संसार में। सबसे भयंकर रोग कॉलरा, टीबी, खांसी, सर्दी ये नहीं है। इसलिए इस सबसे भयंकर रोग के लिए सबसे उचित और अमृतमय औषधि यह सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, और वो क्या है? भव औषधि। और इसको जब सुनते हैं परंपरा में श्रोत्र, अर्थात गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक तौर से सुनना चाहिए, न कि हम किसी कथाकार से सुने जो कि अपना जीवन यापन इस कथा से करता है, जो धन उसे इस कथा के माध्यम से प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए, परंपरा में सुनना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा में आते हुए इस कथा को सुनना चाहिए। मनो अभिरामात, तब वास्तव में मन, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे कृष्ण कथा में वही लोग स्वाद ले सकते हैं जो निवृत्त तर्शे। कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात, भगवान श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहते हैं क्योंकि उनका गुणगान उत्तम श्लोकों से होता है। और परीक्षित महाराज कहते हैं विमान पुरज वो पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्, वो कहते कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि भगवान का गुणगान नहीं करेगा? केवल वो व्यक्ति है जो पशुघ्न है। पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्, पशुघ्न, घ्न मतलब हत्या करने वाला, और पशु, पशु की हत्या कौन करता है? जो कसाई होता है, जो बड़ा क्रूर व्यक्ति होता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि जिसका हृदय एक कसाई की तरह होता है, अर्थात बहुत पत्थर की तरह होता है, वही व्यक्ति कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं ले सकता। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण कथा को पसंद नहीं करते हैं वो कसाई के बराबर है, उनका हृदय पत्थर के बराबर है। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि सभी को इसमें रस लेना चाहिए। इसलिए सारे शास्त्र, सारे संत महात्मा साधु सभी कहते हैं कि जो भी हमारी योग्यता है, हमारे गुण हैं, हमारे पास धन है, बुद्धि है, पात्रता है, सब कुछ भगवान के गुणगान में हमें लगाना चाहिए। अन्यथा जो भी हमारे पास है उसका मूल्य केवल शून्य है। भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। बताया जाता है कि जब हमारे अंदर भक्ति होती है तो हमारा जीवन परिपूर्ण होता है, कि जब भगवान की भक्ति नहीं होती और ऐसे भक्तिहीन हमारे अंदर जो भी गुण हैं, हमारी ऊंचा जन्म, हमारे शास्त्रों वेदों का ज्ञान, हमारी तपस्या, हमारे मंत्रों का उच्चारण, ये सब कुछ बिल्कुल व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? जैसे कि एक मृत शरीर के ऊपर आभूषण और अलंकार। केवल जन साधारण के मनोरंजन के लिए ये सब हो सकता है। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ कर रहा है संसार में, लेकिन उसके हृदय में भक्ति नहीं है, तो ये बिल्कुल व्यर्थ है। तो कृष्ण भगवान यहां पर अवतार लेते हैं केवल हमें एक मौका देने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए। कोई हमें विषय चाहिए? अगर भगवान अवतार नहीं लेते तो हमें कैसा पता चल सकता था कि भगवान कैसे लीला करते हैं? तो भगवान स्वयं यहां आते हैं और लीला प्रदर्शित करते हैं ताकि हम लीलाओं के बारे में जानें और गुणगान कर सकें। तो देखिए, ऊपर के लोकों में भी ऐसे ही गुणगान चलता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि वो लोग सत्वगुण में रहते हैं। ऊर्व गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजस। तो ये मध्य लोक जो पृथ्वी लोक है, ये रजगुण का लोक है। इसलिए यहाँ रजगुण में ग्रस्त लोग हैं तो वो भगवान का गुणगान नहीं कर सकते, भोग में ज्यादा रहते हैं। देवलोक में भी भोग होता है, लेकिन फिर भी वो सत्वगुणी भोग होता है। सोमरस का पान भी करते हैं, लेकिन यहाँ की तरह, यहाँ के सोमरस की तरह नहीं होता। वो वहां का सोमरस बहुत मधुर होता है, और वहां के जो देवलोक के ऊपर लोक के निवासी जो होते हैं, उनके पास भी संगीत होता है, संगीत के वाद्य होते हैं। लेकिन संगीत का विषय क्या होता है? केवल भगवान, केवल भगवान का गुणगान। वहां पर नाम संकीर्तन सतत चलता रहता है। देवलोकों में, देवलोकों में कोई सिनेमा नहीं होते, सिनेमा के गाने नहीं होते। यहां पर सिनेमा के गाने में क्या होता है? पुरुष स्त्री का संबंध के बारे में वर्णन होता है, बस। और कुछ होता है? कुछ नहीं। लेकिन ये तो रजगुण का लक्षण होता है। लेकिन देवलोकों में, ऊपर लोकों में केवल नाम संकीर्तन चलता है। जो भी उनके पास वाद्य हैं, जो भी उनके पास संगीत की कला है, केवल भगवान के गुणगान के लिए प्रयोग करते हैं। शास्त्र में कितने ही ऐसे सुंदर लीला हैं, वर्णन हैं, बार बार हम पढ़ते हैं। जब कृष्ण अपने अलग अलग अवतारों में जब असुरों का वध करते हैं, तो ऊपर के लोकों के निवासी अपना नाम संकीर्तन और जोरों से चालू करते हैं। नारद मुनि अपने पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन उसके भी पहले के जन्म में नारद मुनि वास्तव में गंधर्व थे, और बहुत सुंदर शरीर था उनका, जैसे कि गंधर्वों का होता है। और कई महिलाओं के संग में वो आए, जहां एक सभा में गए जहां नाम संकीर्तन हो रहा था। इसका मतलब है कि वहां सत्संग सतत हुआ करते हैं। तो नारद मुनि, मतलब वो नारद मुनि नहीं थे उस गंधर्व के शरीर में, उनका नाम था तुम्बुरु शायद। तो वहां गए, कई स्त्रियों के साथ में गए और उनके साथ में रमण करते हुए जा रहे थे, तो ये एक तरह का अपराध हो गया। तो उनको शाप मिला, क्योंकि वो एक शूद्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सत्संग में आकर जहां नाम संकीर्तन चल रहा है, वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ में रमण कर रहे हैं, इसलिए उनको शाप मिला कि तुम शूद्र बनो। और इसलिए वो एक दासी पुत्र बनके अगले जन्म में उसने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया। पर क्योंकि वो भक्त थे भगवान के, नाम संकीर्तन में रुचि लेते थे, केवल थोड़ा बहुत स्त्रियों के संग में भटक गए थे, भ्रमित हो चुके थे, इसलिए उनको पुनः अवसर प्राप्त हुआ भगवान का भजन करने के लिए। और उन्होंने भजन किया, भजन में परिपक्वता प्राप्त करके फिर वो नारद मुनि अगले जन्म में बने। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि ऊपर के लोकों में कितना भगवान का गुणगान होता है। ऐसे नहीं कि केवल यूं ही उनको असुर कहा गया है, भगवान के भक्त कहा गया है उनको, सुर और असुर। तो हालांकि देवी देवता गण कभी कभी भोग में लगे रहते हैं, फिर भी हमें उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। उनके हृदय में जो गुण, भगवान के नाम लेने में और भगवान का गुणगान करने के लिए जो रुचि है, वो इस पृथ्वी लोक के लोगों में नहीं है। इसलिए देवताओं का स्थान बड़ा विशेष होता है, तो उनका तिरस्कार यूं ही नहीं करना चाहिए। कई बार कृष्ण लीला में जब देवी देवताओं की बात आती है तो कथा कहते समय भक्त जो होते हैं हम देवताओं की तिरस्कार करते हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से करते हैं। लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि देवतागण कभी निंदनीय नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भगवान का गुणगान करने के लिए स्वाभाविक तौर से रुचि है, नहीं तो भला वो कैसे कर सकते थे ऐसे दिन रात। तो इस तरह से यहां बड़ा बड़ा उत्सव चल रहा था। तो सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं कैसे चल रहा था, तो हम आगे श्लोक पढ़ते जाएंगे। तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादिनैकोत्सव मंगल स्वनान श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतो चिराद् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। बड़ा सुंदर श्लोक है, वास्तव में सच्ची बात है। आप हर एक श्लोक पढ़ के देखिए कितना आनंद आपको आएगा। एक एक श्लोक का शब्दार्थ पढ़िए, देखिए फिर आप कभी भागवत को नीचे नहीं रखेंगे, भागवत को छोड़कर कभी जाएंगे नहीं, कभी नींद नहीं आएगी। ये राज है, बस ऐसे मग्न होकर अपने साथ में पेंसिल कलम किताब साथ में रखिए, नोटबुक और भागवत साथ में रखिए, और आश्वासन दिला सकते हैं आपको नींद कभी नहीं आएगी, भूल जाएंगे आप खाना पीना। वास्तव में इतने रस है, शक्ति है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। तो क्या बता रहे हैं सुखदेव जी, तद अद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका। तो जिस समय वहां पर क्या हो रहा था, अद्भुत स्तोत्र बोले जा रहे थे देवी देवता गण, एक के बाद एक, एक के बाद एक। है हम लोगों के अंदर वो क्षमता कि हम एक के बाद एक सुंदर स्तोत्र बोलते जाएं भगवान के गुणगान में? नहीं, भगवान के गुणगान करने के लिए भी कोई योग्यता चाहिए, एक के बाद एक स्तोत्र बोलने के लिए भी कोई ज्ञान चाहिए, कोई वो प्रवृत्ति चाहिए। कोई भी व्यक्ति आके भगवान का गुणगान नहीं कर सकता है। और ये स्तोत्र कैसे थे? अद्भुत स्तोत्र थे, एक के बाद एक, हर एक लोक में हर एक देवी देवता जो गंधर्व विद्याधर किन्नर इत्यादि अप्सरागण भी स्तोत्र बोले जा रहे थे। सुवाद्य गीतिका, सुवाद्य वाद्य बज रहे हैं बहुत मधुर ढंग से, और उनके पास वाद्य हैं भी, लेकिन कैसे बड़े अच्छे वाद्य हैं वो, आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक जो हैं वाद्यों की तरह नहीं, बड़े मधुर वाद्य, उनसे मधुर स्वर निकलता है। और गीतिका गायन चल रहा था वहां, और क्या हो रहा था, जय आदि जय जयकार हो रहा था। जैसे कीर्तन में कभी भक्त लोग कहते हैं जय 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 हो जय हो करते हैं, तो सब जगह भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार हो रहा था। कल्पना कीजिए आपके मन में ये दृश्य, हालांकि हम अपने इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन अपने मन के नेत्रों से तो भला देख सकते हैं कि ऊपर के लोकों में क्या हो रहा है। जय जयकार हो रहा है, सुवाद्य बज रहे हैं, गीत हुए जा रहे हैं, नृत्य हो रहा है, सब जगह आकाश में उड़ रहे हैं हर्ष उल्लास के साथ में। न एक उत्सव मतलब ये उत्सव किस लिए था, एक ही उद्देश्य से, क्या है, भगवान के गुणगान के लिए, और कोई मतलब नहीं और कोई उद्देश्य नहीं। मंगल स्वनान, ऐसे ध्वनि से, ऐसे उत्सव से सारे ब्रह्मांड का कल्याण हो रहा था। इसी तरह से जब हम यहाँ हमारे मंदिर में भी उत्सव मनाते हैं, जैसे कल मनाया, तो हमें जानना चाहिए कि सारे शहर का उद्धार होता है। वास्तव में केवल जो लोग यहाँ एकत्र होते हैं उत्सव के लिए उनका ही नहीं, क्योंकि यह ध्वनि फैल जाती है सब जगह, सारा धरातल जो है वो पावन हो जाता है, सारा वातावरण पावन हो जाता है, और इसका प्रभाव, इसका असर दूर दूर तक पहुंच जाता है। इसको भौतिक दृष्टि से जान नहीं सकते, ऐसा भी नहीं कह सकते कि केवल बेलगाम शहर की सीमा तक इसका प्रभाव सीमित है, नहीं, कहां कहां इसका प्रभाव जाता है यह दिव्य ध्वनि का कोई कह नहीं सकता। तो जब इतने सारे देवी देवता गण, सारे अनंत लोग, इतने सारे ऊपर के लोगों के निवासी कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव कितना हुआ होगा, कहां तक पहुंच गया होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। श्रुत्वा, कोई एक व्यक्ति सुन रहे थे, कौन सुन रहे थे ये विशेष करके, अजह, ब्रह्मा जी को अजह कहा गया है। अजह का मतलब क्या है? ज मतलब जन्म लेना, अज मतलब जो जन्म नहीं लेता, जिसका कोई जन्म ही नहीं है। आत्मा को कभी कभी अज कहा गया है भगवद गीता में, क्योंकि आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण का और एक नाम है अजह, क्योंकि उनका भी ना तो कोई जन्म है और ना कोई मृत्यु। उनके शरीर में और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, उनका पूर्ण शरीर ही सच्चिदानंद स्वरूप है, चिन्मय है। लेकिन ब्रह्मा जी का शरीर तो भौतिक है, ब्रह्मा जी के शरीर में और आत्मा में अंतर है, फिर भी ब्रह्मा जी को क्यों अजह कहा गया? क्योंकि ब्रह्मा जी के माता पिता नहीं थे। जैसे हमारे माता पिता होते हैं, हम माता पिता से जन्म लेते हैं, तो ब्रह्मा जी के ऐसे माता पिता नहीं हुए। ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ? एक कमल से हुआ। तो उनके माता पिता दोनों गर्भोदकशायी विष्णु थे। है ऐसे संसार में कोई व्यक्ति जो कह सकता है कि मेरे माता पिता दोनों गर्भोदकशायी विष्णु हैं? नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी का जन्म इतना अद्भुत हुआ, कोई साधारण माता पिता नहीं थे उनके, साक्षात भगवान जो उनके दोनों माता पिता थे, इसलिए उनको अजह कहा गया, अजह शब्द से संबोधित किया जाता है। तो ब्रह्मा जी कहां थे उस समय जब ये उत्सव चल रहा था? स्वधामनो, अपने ही धाम में थे, जिसका नाम है ब्रह्मलोक। यहां ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं और ऊपर के जो लोक हैं, जैसे भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वास्तव में हर एक जो ये भुवन है ये एक सिस्टम है। अनेक लोक होते हैं, जैसे भूलोक में अनेक लोक हैं, भूवर लोक में अनेक ग्रह हैं, स्वर्ग लोक में भी अनेक हैं, उसी तरह से सत्य लोक में भी अनेक हैं, जिनमें से मुख्य है ब्रह्मलोक। तो सत्य लोक के स्तर में जो लोक है उसमें से प्रमुख ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं कमल पुष्प के ऊपर। ये भौतिक ब्रह्मांड को भी हम अच्छी तरह से समझ नहीं सकते, हमारे समझ के बिल्कुल बाहर है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं, ये सब सुन रहे हैं। श्रुत्वा स्वधामनो, अंति, अंति मतलब ये पास में हो रहा है। पास में क्या हो रहा है? ये सब उत्सव पास में ही मनाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे मंदिर के बाहरी सड़क पर कोई बैंड बाजा जाए तो स्वाभाविक है कि सभी लोग उठकर देखेंगे क्या चल रहा है, पास में ही है अंति। तो ब्रह्मा जी भी सुन रहे हैं कि पास में ही ये क्या है कि सुवाद्य बज रहे हैं, गीत गा जा रहे हैं, स्तोत्र हो रहे हैं, जय जयकार हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अंति पास में, इसका तात्पर्य ये है कि केवल स्वर्गलोक में नहीं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में भी गान हो रहा था भगवान का, क्योंकि कृष्ण ने अघासुर का वध किया। देखिए इस एक वध के लिए कहां कहां तक गुणगान चल रहा था, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक में भी चल रहा था। यह है तात्पर्य अंति शब्द का, बहुत पास में, हमारे लिए बहुत दूर है, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए कोई दूर नहीं है। ब्रह्मा जी एक क्षण में वहां से यहां आ सकते हैं, तो वहां से महरलोक, जनलोक तो उनके लिए बहुत पास में है, पड़ोस में है। जैसे जिस व्यक्ति के पास गाड़ी है उसके लिए खानापुर तो बहुत 25 मिनट की बात है, जिसके पास गाड़ी नहीं, जिसको पैदल जाना पड़ता है, उसके लिए खानापुर बहुत दूर है बेलगाम से। तो ब्रह्मा जी के लिए आना जाना अपने योग सिद्धि से कोई बड़ी बात नहीं, छट करके जा सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत दूर है पृथ्वी लोक के निवासियों के लिए, इसलिए शब्द अंति का मतलब है कि ब्रह्मा जी के लिए उनकी दृष्टि से ये सारे महरलोक, जनलोक बड़े पास में थे और इन सारे लोकों में ये सब चल रहा था। तो ब्रह्मांड भर में ये सब गुणगान चल रहा था। तो ब्रह्मा जी जाके देखने लगे, दृष्ट्वा, देख रहे हैं। जैसे हम लोग भी अगर बाजा बज रहे हैं तो जाके देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या क्या चल रहा है। तो बड़ी उत्सुकता हुई ब्रह्मा जी के मन में कि इतना गुणगान, इतने स्तोत्र बज रहे हैं, क्या हो बात है। मही ईशस्य, मही मतलब गुणगान, ईशस्य मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे गुणगान जब चल रहा था, ब्रह्मा जी ने देखा, दृष्ट्वा, देखकर क्या असर हुआ ब्रह्मा जी के ऊपर? जगाम विस्मयम, वो हुए क्या हुए, बड़े विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। बड़ा आश्चर्य उनको हुआ कि इस बालक कृष्ण ने ऐसे भयंकर असुर को मारा कैसे, ये पहली बात। और जब ये बालक को मार दिया तो सारे ब्रह्मांड भर में गुणगान चल रहा है, तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और केवल 5000 साल पहले की बात नहीं है, आज भी गुणगान सारे ब्रह्मांड भर में चल रहा है। अभी हम कहते हैं कि कलयुग जो है ये हमारे लिए बहुत बुरा युग है, लेकिन देवी देवताओं के लिए, ऊपर के लोगों के लिए कलयुग का खास प्रभाव नहीं पड़ता। उनके लिए जैसे बादल आता है चले जाता है, कलयुग का प्रभाव केवल हमारे, हम लोगों के ऊपर, पृथ्वी लोग के ऊपर ज्यादा पड़ जाता है। वहां तो उनका गुणगान चलता रहता है, कितने ही सतयुग आते हैं जाते हैं, देव लोकों में उनकी जीवन की अवधि रहती है एक मन्वंतर के बराबर। एक मन्वंतर मतलब करीब करीब 70 चतुर्युग। तो 70 सतयुग और कलयुग आते हैं चले जाते हैं, देव देवताओं के लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और स्वर्गलोक के भी ऊपर जो लोग रहते हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, उनकी तो जीवन की अवधि और भी लंबी होती है। कई लोग ब्रह्मा जी के सारे दिन भर में रहते हैं, और जो ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं, ब्रह्मलोक में, वो तो उनकी जीवन की अवधि ब्रह्मा जी जितनी होती है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड के जीवन की अवधि जितनी है उतनी उनकी होती है। तो इसलिए वहां पर गुणगान अभी भी, इस वक्त भी सब जगह चल रहा है। अब ये प्रश्न किया जा सकता है कि इस ग्वाल बाल की लीला में ऐसी कौन सी अद्भुत बात थी कि लोग इतना सब गुणगान कर रहे थे, ये कहने की बात है और सुनने की बात है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, और उनकी लीला में जो माधुर्य है, उनकी लीला में जो रस है, वो दूसरे अवतारों की लीलाओं में उतना नहीं है। कृष्ण भगवान में और नारायण में अंतर क्या है, कोई बता सकते हैं? नारायण भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है। कृष्ण में 64 गुण होते हैं, लेकिन और जो अवतार होते हैं भगवान के, यहां तक कि नारायण में भी केवल 60 गुण होते हैं। तो कौन से ये 4 गुण हैं कृष्ण भगवान में जो नारायण में भी नहीं है? एक है वेणु माधुरी, बहुत मधुर ढंग से कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं। नारायण को कभी बांसुरी बजाते हुए आपने देखा या सुना है? नरसिंह देव को बांसुरी बजाते हुए उनको कभी सुना है? नहीं। और ऐसे बजाते हैं, मधुर बजाते हैं। बलराम जी भी बजाते हैं, ग्वाल बाल भी बजाते हैं, लेकिन जिस तरह से कृष्ण बजाते हैं, श्याम सुंदर कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, इसकी कोई तुलना नहीं है। ये तो अलग ही विषय है। और दूसरा लीला माधुरी, बड़े सुंदर सुंदर लीला करते हैं वो अपने भक्तों के संग में, खास करके अपने बाल लीला, जैसे अभी यहां कृष्ण भगवान कर रहे हैं वैसे। तीसरा रूप माधुरी, उनका सौंदर्य बड़ा अद्भुत है, अतुलनीय है। उनका सौंदर्य भी एक बड़ा विषय है, ये भी नारायण में भी उतना सौंदर्य नहीं है। और चौथा प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी मतलब उनके बीच में और उनके भक्तों के बीच में ऐसा घनिष्ठ मधुर प्रेम का संबंध है, वो हमेशा घिरे हुए रहते हैं ऐसे रसिक भक्तों से, जैसे वृंदावन के भक्त हैं ब्रजवासी। और ऐसे निकट के संबंध नारायण के भक्तों को भी नारायण के साथ में नहीं होता है। इसलिए कृष्ण लीला में ये विशेषता है जो कि नारायण लीला और अन्य अवतारों में नहीं है। इसलिए जब कृष्ण भगवान अवतीर्ण होते हैं अपने आदि रूप में, श्याम सुंदर गोविंद वृंदावन धाम को लेकर इस भौतिक ब्रह्मांड में आते हैं, तो ये एक बहुत दुर्लभ चीज है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार ये कृष्ण आते हैं आदि रूप में। तो जब ऐसे होता है तो स्वाभाविक है कि सारे ऊपर के लोक के निवासी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। जिस तरह से भगवान के भक्त मंदिर में रोज जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, घर का दर्शन तो घर का दर्शन है, लेकिन मंदिर में आते हैं विशेष दर्शन होता है। ठीक उसी तरह से ब्रह्मा जी के हर दिवस में जब भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं लीला करते हैं तो सारे ऊपर के लोगों के निवासी आकर देखना चाहते हैं, उनका हृदय भरता नहीं है, और भी ज्यादा भगवान की लीला का आनंद और आस्वादन लेना चाहते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने यह अद्भुत घटना देखी। ये वर्णन समाप्त किया सुखदेव गोस्वामी ने तो आगे परीक्षित महाराज से कहने लगे, एतत् कौमारजं कर्म हरेर आत्महि मोक्षणम् मृत्योः पौगंडके बाला दृष्टवो चूर्विस्मिताव्रजे। कहने लगे एतत् इस घटना के बाद, कौन से घटना के बाद, अघासुर के वध के बाद कृष्ण भगवान ने जब अपने आप को और ग्वाल बालों को अघासुर के मुख से बचाया और जब अघासुर का वध किया, इस घटना के बाद आत्म ही मोक्षणम मृत्यो हो, अही मतलब सांप अजगर, मोक्षणम मृत्यो हो, इस घटना में जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने अही मतलब अघासुर को क्या किया, मृत्यु से मोक्ष दिला दिया। तो इस घटना के बाद में, इस घटना के संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, कौमारजम कर्म, कृष्ण भगवान ने कुमार अवस्था में इस कार्य को संपन्न किया और आगे चल के पौगंड के बाला दृष्ट वोचुर विस्मिता व्रजे, लेकिन जो ग्वाल बाल हैं उन्होंने इस घटना का वर्णन दृष्टवा ऊचहु, ऊचहु मतलब बोलना, तो उन्होंने इस घटना का वर्णन ब्रज में जाकर कब किया, पौगंडा के पौगंड अवस्था में जब कृष्ण थे तब वर्णन किया। इसका मतलब क्या है कि घटना कब हुई, जब कृष्ण भगवान कुमार अवस्था में थे, 5 साल की उम्र में थे, और इसका वर्णन कब किया ग्वाल बालों ने, 6 साल की उम्र में जब कृष्ण थे, 1 साल बाद, और उस समय क्या कहा उन्होंने, ये घटना अभी अभी हुई है, विस्मिता व्रजे। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब कोई घटना 1 साल पहले हो और अभी 1 साल बाद में आकर कोई कहे कि ये घटना अभी हुई है तो ये स्वाभाविक है कि ये आश्चर्य का विषय हो जाए। अब ये कुमार अवस्था पौगंड अवस्था ये इत्यादि क्या है, जब कोई व्यक्ति जन्म से लेकर 5 साल की उम्र का होता है तो उसको कुमार कहते हैं और इस आयु को कौमार कहते हैं, 6 साल से 10 साल की आयु उसको, इस आयु के अवस्था को पौगंड कहते हैं और 10 साल से लेकर 15 साल तक इसको कहा जाता है कैशोर या नवयुवा और फिर 15 साल के आगे उसको यौवन कहा जाता है। तो ये 4 स्थितियां हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ये 3 स्थितियों में से गुजरे, कैशोर अवस्था में पहुंचे लेकिन किशोर अवस्था में पहुंचने के बाद में भगवान श्री कृष्ण और आगे बढ़े नहीं, क्योंकि किशोर अवस्था भगवान श्री कृष्ण का नित्य रूप है, गोलोक वृंदावन में कृष्ण हमेशा किशोर रूप में ही रहते हैं, जब वो इस आयु के हो जाते हैं पर वहीं पर रह जाते हैं और आगे बढ़ते नहीं है, यह कृष्ण की विशेषता है। तो कुमार अवस्था में अर्थात 5 साल की आयु तक कृष्ण भगवान गोकुल में रहे और नंद महाराज यशोदा मैया और वरिष्ठ गोप गोपियों के संग में वात्सल्य रस का आस्वादन किया। जब पौगंड अवस्था की प्राप्ति हो गई तो वह वृंदावन में गए, वृंदावन में जाकर उन्होंने अपने सखाओं के साथ में सुंदर सुंदर लीलाएं किए, गौओं को चराया, वनों में क्रीड़ा की और इस समय सख्य रस का आस्वादन किया। कैशोर अवस्था की प्राप्ति जब हुई भगवान श्री कृष्ण की तो तब कृष्ण भगवान और सारे ब्रजवासी नंदग्राम में आ चुके थे, तो वहां पर नंदग्राम में और आसपास के इलाकों में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग में माधुर्य रस का आस्वादन किया और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सारे रसों का आस्वादन अलग अलग स्थानों में किया। और जब श्री कृष्ण 10 साल के हो जाते हैं, अर्थात वो किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण और बढ़ते नहीं है, उनका शरीर जैसे है वैसे ही रहता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। पद्म पुराण में बताया जाता है कि कोई महान व्यक्ति होता है तो वो उसके आयु से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा लगता है कम उम्र में। तो कृष्ण भगवान 10 साल के थे तो 15 साल के युवक की तरह लग रहे थे। इसी तरह इसीलिए कृष्ण भगवान हमेशा एक 16 साल के युवक की तरह लगते हैं। हालांकि वो अर्जुन के साथ रथ पर सवार थे कुरुक्षेत्र में, उस समय उनकी आयु करीब करीब 125 साल की हुई थी, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान 16 साल के नवयुवक की तरह लग रहे थे। जो उनका रूप था 10 साल की उम्र में, वही रूप उस समय भी। इसीलिए ये कृष्ण भगवान है, ये उनका अद्भुत रूप होता है। तो इस तरह से कौमार, पौगंड, केशोर और युवा, ये चार अवस्थाएं रहती हैं। तो कृष्ण भगवान ने जब अघासुर का वध किया, उस समय वो 5 साल के थे, कुमार अवस्था के अंतिम स्तर में पहुंच गए थे। और जब पौगंड अवस्था में प्रवेश किया उन्होंने, जब 6 साल हो गए उनके, तो उस समय ये घटना का वर्णन वृंदावन में हुआ। और ये घटना वास्तव में बलराम जयंती पे हुआ, कल जो हमने उत्सव मनाया। जिस दिन ब्रह्मा जी ने चोरी किए थे ग्वाल बालों को, या जिस दिन अघासुर का वध हुआ था, उसी दिन बलराम जी का जन्मदिवस था। इसलिए घर में वो रहे थे क्योंकि माता रोहिणी उनको आभूषित करना चाहते थे, उनको नहलाना चाहते थे, उनको खिलाना चाहते थे, उनको आरती करना चाहते थे। जो हम देखते हैं कि पूर्व काल में भी ऐसे होता था, बच्चे का जन्मदिन होता था तो उसे लेप लगाया करते थे, चंदन से तेल से नहलाया करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करते हैं। तो बलराम को घर में रहना उस समय आवश्यक था, तो इसलिए वो नहीं आए थे। तो इस समय जब पूरा 1 साल बीत गया, उस समय फिर से बलराम जी का जन्मदिवस आ गया, तो उस दिन भी बलराम जी नहीं आए। तो बलराम जी को भी बिल्कुल पता नहीं चला कि ये ब्रह्म विमोहन लीला क्या है, क्या हुआ, उनको भी कुछ नहीं पता चला। तो इस तरह से कृष्ण भगवान जब 6 साल के हुए बलराम जयंती के दिन, तब ये घोषणा हुई ब्रज में आकर। ग्वाल बाल कहने लगे कि आज कृष्ण भगवान ने ये किया, अघासुर का वध किया, इतना भीषण राक्षस था, इतना बड़ा सांप अजगर, 8 मील लंबा, 1 योजन लंबा। अभी जब ऐसे वर्णन हुआ 1 साल बाद, तो सुखदेव गोस्वामी ने जब प्रश्न किया, तो ये सुखदेव गोस्वामी जब कहा, तो ये स्वाभाविक ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि ग्वाल बालों की आदत थी कि रोज आके वो रिपोर्ट दिया करते थे, डेली रिपोर्ट हुआ करता था। रोज कृष्ण भगवान के संग में जब लौट के आते थे गायों को चरा के, तो कहते थे आज कृष्ण ने ऐसे किया, आज कृष्ण ने इस असुर का वध किया, आज कृष्ण ने उस दावानल का पान किया। ऊंचे ऊंचे स्वरों में, अलग अलग अपने अपने आवाज में, अपने अपने बोली में हर एक बालक बोला करता था अपने अपने घर में जाकर। इसलिए हर एक घर में कृष्ण कथा होती थी जब बालक आते थे वापस। जैसे कि जब बच्चे स्कूल से लौटकर आते हैं तो अपने स्कूल में क्या किया, टीचर ने ऐसे हमें थप्पड़ मारा, टीचर ने ऐसे डांट दिया, हमें ये पूछा, हमें इतने मार्क मिल गए, और ये स्कूल की कथा चलती है घर में थोड़े समय के लिए। सही है नंद महाराज जी, सही है ना? और आपके जो भी, आप जो भी माता पिता हैं, आप सब जानते हैं यही सब चलता है। तो उसी तरह से जब ये ग्वाल बाल अपने घर में लौट कर आते थे, तो जो दिन में हुआ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सब बड़े उत्तेजित होते थे और उत्साह से, उत्तेजना से बोलते थे सुबह से शाम तक क्या हुआ, सारे लीलाओं का वर्णन, अ से अंग तक, सारे A to Z पूरा लीलाओं का वर्णन करते थे। और फिर इस तरह से सारे गोपियां, गोपगण सब भाव विभोर हो जाते थे, कृष्ण लीला के आनंद के सागर में डूब जाते थे, अपने घरेलू कार्यों को भूल जाते थे, छोड़कर ग्वाल बालों के संग में आकर बैठ जाते थे। अरे सुनाओ तो सही, आज कृष्ण ने क्या किया, आज कौन से असुर का वध किया, आज क्या हुआ। इस तरह से यह है वृंदावन का जीवन। कृष्ण भगवान जब नहीं होते थे, जब वन जंगल में जाते थे, तो उस समय जो पहले दिन सुना था उस लीला का मंथन होता था। अरे क्या तुमने सुना ऐसे हुआ, एक गोपी कहती थी, दूसरी गोपी कहती थी हाँ हाँ, और इतना ही नहीं लेकिन मेरे लड़के ने ये भी बताया कि कृष्ण ने ऐसे भी किया था। अच्छा ये तो मेरे लड़के ने नहीं बताया, अच्छा ये भी है। तो हर एक लड़का अपने अपने दृष्टिकोण से उस लीला को देखकर उसमें और रस आ जाता था। और जब अगले दिन जब गोपियां मिलती थी एक दूसरे को, एक साथ में जब मंथन करती थी, गाय का दोहन करती थी, तो आपस में बातचीत चलता था, तो इस रस का पान होता था, मंथन होता था इस लीला के अमृत के समुद्र का, और ऐसे रस की वृद्धि होती थी। और फिर से शाम को ग्वाल बाल आ जाते थे, फिर से उस दिन का रिपोर्ट आ जाता था, और यही वृंदावन का जीवन था। ऐसे जीवन देने, यही जीवन कट, उनके दिन एक के बाद एक ऐसे ही कटते जा रहे थे। ये है जीवन, असली जीवन। ऐसा नहीं कि दिन भर हम इधर उधर रहे, दिमाग नहीं सारे संसार में लगा हुआ है, मुश्किल से किसी न किसी तरह से सोला माला कर लिए तो कर लिए, नहीं किए तो अगले दिन के लिए छोड़ दिए, और मुश्किल से कभी बाय चांस भागवत गीता किताब हाथ में आ गई, और कभी कभी क्लास में आ सके, वो भी जगे हुए रह सके। वृंदावन का जीवन देखे कितना रम्य है। वहां कोई भी व्यक्ति उब नहीं जाता था कृष्ण की कथा सुनकर, किसी को ऐसा नहीं लगता था कि आज ये बच्चे कुछ बोल रहे हैं हम सो जाएं थोड़ी देर के लिए, नहीं। या कोई ऐसे नहीं सोचता था कि वहां कृष्ण के बारे में बातचीत हो रही, हम यहीं पर रह जाए, वहां जाकर क्या सुनना है आखिर, रोज तो सुनते हैं कृष्ण कथा, क्या बार बार सुनना है, नहीं। जब भी कोई गोप गोपियां सुनते थे कि वहां कोई बात चल रही है कृष्ण के बारे में, तुरंत वहां चले जाते थे सुनने के लिए, अरे क्या हो रहा है कृष्ण के बारे में, क्या चर्चा चल रही है। तो इस तरह से वृंदावन का जीवन था। तो जब इस बार एक साल ये लीला का रिपोर्ट नहीं आया, और सुखदेव गोस्वामी इसका ने इसका वर्णन किया, तो ये भी स्वाभाविक है कि परीक्षित महाराज तुरंत पूछने वाले हैं प्रश्न कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत ध्यान से श्रवण कर रहे थे। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज आज कभी कभी बीच में सो जाते थे, बस जाग जाते थे, तो बीच में क्या लिंक था वो टूट जाता था, ऐसा नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से सुन रहे थे, इसे तुरंत उन्होंने पकड़ ली इस बात को कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि 5 साल की उम्र में ये घटना हुई, और 6 साल की उम्र में ग्वाल बालों ने जाके घोषणा की व्रज में कि ये घटना आज हुई है। तो तुरंत परीक्षित महाराज ने बात को पकड़कर आगे क्या कहा हम सुनते हैं। ब्रह्मन् कालांतर कृतम् तत्कालीनं कथं भवेत् यत् कौमारे हरि कृतं जगुः पौगंडकेर्भकाः। परीक्षित महाराज ने यह सब वर्णन सुना तो उनका मन स्थिर हो गया, और भी सुनने के लिए इच्छुक हो गए, और क्या कहे, ब्रह्मन् हे ब्राह्मण अर्थात हे सुखदेव गोस्वामी, कालांतर कृतम, काल अंतर कृतम, कृतम मतलब कोई कार्य जब संपन्न हो जाता है, काल अंतर मतलब कोई वस्तु जब किसी अन्य काल में किया जाता है, अन्य काल में जो कृत होता है वो वस्तु। तत्कालीनम कथम भवेत, तत्काल में मतलब अब उसका कथन हुआ, ये कैसे, मतलब जिस जो घटना बहुत पहले घट चुकी थी उसका वर्णन अब हुआ, यह कैसे हुआ। तत्कालीनम कथम भवेत यत कौमारे हरिकृतम, हरिकृतम मतलब हरि ने वो काम किया, कब, कौमार में, जगहु पौगंड के अर्भकाह। तो अर्भकाह मतलब बालक, कौन का बालक, ग्वाल बाल। जगहु मतलब वो घोषणा करने लगे, कभी पौगंडक में, तो जो लीला हरि ने कुमार अवस्था में की थी उसकी घोषणा भला अर्भकों ने, ग्वाल बालों ने पौगंड अवस्था में आकर क्यों की। तुरंत परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर लिया। तद ब्रूहि मे महायोगिन परम कौतूहलम गुरो नूनम एतद हरेर एव माया भवति नान्यथा। कहने लगे तत् ब्रूहि, ब्रूहि मतलब कहिए, इस बात को मुझे कहिए हे महायोगी, हे गुरु महाराज, क्योंकि इस विषय में मुझे परम कौतूहलम, बहुत कौतूहल हो रहा है, बहुत तीव्र जिज्ञासा की भावना मेरे हृदय में है कि ऐसा क्यों हुआ। जिज्ञासा यह बुरी बात नहीं है, लेकिन जिज्ञासा किस विषय पर केंद्रित करनी चाहिए यह परीक्षित महाराज बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिज्ञासा हम इसके ऊपर केंद्रित करें कि संसार में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, उधर क्या हो रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। नहीं, परीक्षित महाराज का कौतूहल किस विषय में है? कृष्ण लीला के विषय में। इसलिए ऐसी जिज्ञासा उचित है। इसको कहते हैं अथात ब्रह्म जिज्ञासा, जो वेदांत में कहा गया है। ऐसे जिज्ञासा हमारे अंदर होने चाहिए और इस तरह के प्रश्न भी हमें करने चाहिए। नूनम एतद हरेर एव माया भवती न अन्यथा। मुझे लगता है हे शुकदेव जी, हे मेरे गुरु महाराज, कि ये केवल हरि के माया का खेल है, न अन्यथा, और कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो भला ऐसे अद्भुत घटना क्यों हो जाए कि एक साल के बाद उसका वर्णन हो। तो ये अवश्य कोई हरि लीला है, हरि के माया का खेल है ये। ये परीक्षित महाराज का मत है, क्योंकि आखिर परीक्षित महाराज भी तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना। वो तो एक महाभागवत है और बड़े वो भी रसिक भक्त हैं, इसलिए तो बैठ पाए हैं, सुन पाए हैं कृष्ण कथा इतनी देर तक। दशम स्कंद तक कथा पहुंच चुकी है, मतलब कम से कम 5.5 दिन तो बीत चुके हुए होंगे कथा के आरंभ के बाद में। जब परीक्षित महाराज बिना सोए हुए, बिना खान पान किए हुए अगर बैठे हैं, इसका मतलब है कि महान भक्त अवश्य वो हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि ये तो अवश्य कोई कृष्ण लीला, कृष्ण के माया का खेल है। कृष्ण की अलग अलग शक्तियां होती हैं, परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभावेकी ज्ञान बल क्रियाच, और इनके अलग अलग शक्तियों का प्रयोग भगवान अपनी लीलाओं में अलग अलग तरह से करते हैं। वास्तव में आचार्य बताते हैं कि भगवान नहीं करते हैं, भगवान की लीला शक्ति ये सारे कार्य कर देते हैं, और कृष्ण के लीला में रस की वृद्धि करने के लिए। तो भगवान भी नहीं जानते कि उनकी लीला शक्ति कैसे कार्य कर रहे हैं। ये सुंदर बात है, क्योंकि भगवान अगर जानते तो लीला का स्वाद में घटन हो जाता था। तो आगे चल के शुकदेव परीक्षित महाराज बताते हैं, वयम धन्यतमा लोके गुरोपि क्षत्र बंधवः वयम पिबामो मोहस्त्वतः पुण्यम कृष्ण कथामृतम्। वो कहते हैं शुकदेव परीक्षित महाराज, हालांकि मैं तो क्षत्रियों में से सबसे नीच हूं, फिर भी मेरा जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि हमें आपसे कृष्ण कथा के अमृत का पान करने का अवसर प्राप्त हो गया है। अब यहां शुकदेव गोस्वामी कहते हैं पुण्य कृष्ण कथा अमृतम, अर्थात कृष्ण कथा अपने आप में ही पुण्य है। इससे ज्यादा पुण्यवान कोई कार्य संसार में नहीं है। श्रृण्वतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। श्रीमद् भागवत के शुरुआत में ही सूत गोस्वामी बताते हैं कि ये कृष्ण कथा जो है पुण्यवान है, इसलिए इसका श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और ऐसा श्रवण कीर्तन करने से क्या होगा? हृदयंतस्थ, हृदय में स्थित होने वाली अभद्राणी, जो भी अभद्र गंदी चीजें हैं, विधुनोति, नष्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत सुंदर बात है कि कृष्ण कथा अपने आप में तो पुण्य है ही, लेकिन जो व्यक्ति इस कृष्ण कथा को हमेशा सुनता है वो भी पुण्य बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। और कृष्ण कथामृतम, अमृत, ये शब्द क्या है? अमृत, जब हम अमृत शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें स्मरण आता है कि देवी देवता लोग अमृत का पान करते हैं। समुद्र मंथन उन्होंने किस लिए किया था? असुरों के साथ में अमृत को प्राप्त करने के लिए। तो वो अमृत मतलब क्या है? जो दीर्घ आयु प्रदान करता है। लेकिन वास्तव में अमृत, वास्तव में शब्द का अर्थ है जो हमें मृत्यु से परे ले जा सकता है, जो हमें शाश्वत जीवन दे सकता है, उसको वास्तव में अमृत कहते हैं। जो देवलोक में जो अमृत का पान करते हैं वो वास्तव में अमृत नहीं है, केवल उसका पान करके लंबे आयु तक वो जी सकते हैं। इसीलिए देवी देवताओं को कभी कभी शास्त्रों में अमर कहा गया है, लेकिन वो वास्तव में अमर नहीं है। उनके जीवन की अवधि भले बहुत लंबी क्यों न हो, लेकिन उनकी भी तो मृत्यु होने वाली है एक दिन। आ ब्रह्म भुवना लोक पुनः आवर्तिन अर्जुन माम उपेति तो कौन से पुनर्जन्म न विद्यते, कि ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक सभी लोकों में जन्म और मृत्यु का चक्कर है। ब्रह्मा जी को भी एक न एक दिन मरना है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है वो वास्तव में अमर हो जाता है। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि हालांकि देवताओं को अमर कहते हैं और जिस चीज को वो पान करते हैं उसे अमृत कहते हैं, फिर भी वो वास्तव में न तो अमर हैं और ना तो वो वास्तव में अमृत का पान कर रहे हैं। सच्चा अमृत क्या है? कृष्ण कथा है। क्यों? क्योंकि इसके पान में भी वो स्वाद है, वो मधुर उत्कृष्ट स्वाद है जो कि देवलोक के अमृत में भी नहीं है। ये पहली बात। और दूसरी बात कि ये वास्तव में हमें शाश्वत जीवन प्रदान कर सकता है। इसलिए बताया जाता है आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यम अस्तन चयन असो तस्यत्य यत्क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सूरज के उदय होने से और सूरज का अस्त होने तक उस हर एक व्यक्ति मृत्यु के एक दिन करीब आ पहुंचता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करते रहता है वो एक दिन और अमर जीवन की ओर आगे बढ़ता है, उसके जीवन का घटन नहीं होता। लेकिन जो कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन नहीं करता है, सूरज के हर अस्त होने से, उदय होने से और अस्त होने से उसके जीवन की अवधि का घटन हो जाता है, लेकिन भक्त के लिए ऐसा नहीं होता। तो ये है कथामृत, कृष्ण कथामृत शब्द का तात्पर्य। तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि अगर कोई हमें कोई ऐसे व्यक्ति दे रहा, ऐसे चीज दे रहा हो जिससे हमें मृत्यु से छुटकारा मिले, वास्तविक शाश्वत जीवन मिले, तो ये कोई छोटी बात है? अगर हम भागवत में भी लीलाएं पढ़ते हैं कि जो अश्विनी कुमार हैं स्वर्गलोक के, वो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, और वो थोड़े निम्न श्रेणी के देवता माने जाते हैं, इसलिए देवतागण उनको सोमरस नहीं दे रहे थे, लेकिन च्यवन मुनि की कृपा से, ये लीला नवम स्कंद में आती है, च्यवन मुनि को उन्होंने युवक बनाया। च्यवन मुनि विवाह करना चाहते थे सुकन्या से, सुकन्या जो कि राजा शर्याति की कन्या थी, और जब सुकन्या ने ऐसे अपने वृद्ध पति च्यवन मुनि की सेवा करती रही, तब एक बार च्यवन मुनि ने विचार किया कि ये मेरी इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रही है तो मुझे भी एक सुंदर रूप धारण करना चाहिए, इसे संतुष्ट करना चाहिए। तो उस समय जो अश्विनी कुमार हैं वो आए और उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक यज्ञ संपन्न कीजिए जिससे कि हमें भी सोमरस का पान हो जाए, और इतने आभारी हुए अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के कि उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐसा बहुत ही सुंदर शरीर देंगे, एक युवक का शरीर देंगे, और दे दिया। उस समय इंद्र बड़े क्रोधित हो गए और इंद्र ने अपना वज्र उठाया च्यवन मुनि की ओर आक्रमण करने के लिए, लेकिन च्यवन मुनि ने उनके हाथ को पैरालाइज कर दिया इंद्र को, और इंद्र उस अस्त्र को हिला भी नहीं पाए, यूं ही रह गए। तो देखिए सोमरस का पान जो कि देवलोक का अमृत है, उसका पान करने के लिए ऊपर के लोकों के निवासी भी कितने तरस रहे हैं। सारे देवलोक देवता और असुर ने मंथन किस लिए किया? केवल इसके लिए, इस अमृत के लिए जो कि वास्तव में शाश्वत जीवन नहीं प्रदान कर सकता। तो जब हमें ऐसे वस्तु की प्राप्ति हुई है जिससे शाश्वत जीवन मिल सकता है, तो इसके उसको प्राप्त करने के लिए हमें और कितना आतुर होना चाहिए, और कितना परिश्रम करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये सुनने की सोचने की बात है। तो ये है तात्पर्य पुण्यम कृष्ण कथामृतम का, और इस तात्पर्य को परीक्षित महाराज बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसलिए अपने आप को अति भाग्यशाली समझ रहे हैं। कहते हैं वयम, हम धन्य तमा लोके, हम जैसा कोई धन्य व्यक्ति इस सारे लोक में नहीं है। क्यों? क्योंकि वयम पिबामो मुहस्तवतः, वयम हम पी रहे हैं पिबामो मुह बार बार, यही कृष्ण कथा का पान करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारा जीवन धन्य और भी कारण से हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है। योग्यता न होते हुए भी हमें ऐसा सुअवसर प्राप्त हो रहा है, ये तो हमारा अहो सौभाग्य है। कृष्ण कथा एक बहुत गुही चीज है, सभी के लिए नहीं है कृष्ण कथा। और जब ऐसे बारंबार सुनने को मिलता है और सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य महाभागवत से सुनने को मिलता है, तो किसी भी व्यक्ति को अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए और परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त होने के नाते अपने आप को बहुत तुच्छ समझ रहे हैं और अपने आप को क्या कह रहे हैं, क्षत्र बंधव, मतलब क्षत्र बंधु, जिस तरह से ब्रह्म बंधु, जो व्यक्ति ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेता है लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं होते, वो ब्रह्म बंधु कहलाता है। जैसे अश्वत्थामा जब द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर ली, तो अर्जुन और अन्य पांडव इतने क्रोधित हो गए कि उसकी हत्या करने ही वाले थे, लेकिन उस समय द्रौपदी की कृपा से अश्वत्थामा बच गए, क्योंकि द्रौपदी स्त्री थी, हृदय थोड़ा कोमल था, सोच लगी कि मेरे पुत्रों की हत्या हो गई है तो मेरी जो दशा है वो अश्वत्थामा की मां की क्यों होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसको मारो मत, ये ब्राह्मण नहीं है, ये सही है, ये तो ब्रह्म बंधु है, क्योंकि ब्राह्मण के गुण इसमें नहीं है, अर्जुन कहने लगे। इसलिए केवल उसका तिरस्कार करके अपमान करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर ब्राह्मण के गुण उसमें नहीं होते, उसे ब्रह्म बंधु कहलाते हैं। ठीक उसी तरह से क्षत्र बंधु, जो क्षत्रिय के परिवार में जन्म लेता है लेकिन उसके अंदर क्षत्रिय के गुण नहीं है। क्या है क्षत्रिय के गुण? भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ये सारे क्षत्रिय के कर्तव्य होते हैं, उनके कार्य होते हैं, और सबसे बड़ा कार्य कौन सा है? सबसे उनमें से एक कार्य है दानम ईश्वर भावस्य। ईश्वर भावस्य मतलब नेतृत्व की भावना की प्रवृत्ति की क्षमता पात्रता, जो लोगों के ऊपर राज जमा सके। तो क्षत्रिय जो है वो है जो नेता बन सके, वास्तव में नेता बन सके, प्रजा को संभाल सके। तो पृथु महाराज परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि मैं तो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया लेकिन मैं इतना नीच हूं कि मैंने ब्राह्मणों के ऊपर राज जमाने का प्रयास किया, जो कि क्षत्रिय को कभी नहीं करना चाहिए। क्षत्रियों को हमेशा ब्राह्मण के निर्देशन के अनुसार काम करना चाहिए, उनके चरण कमलों में रहना चाहिए, लेकिन मैं कितना नीच हूं कि मैंने इस श्रमिक ऋषि के ऊपर जाकर मैंने इतना बड़ा अपराध किया, और मैंने अहंकार से सोचा कि श्रमिक ऋषि ने मेरा अपराध किया है और एक मरे हुए सांप को गले में लटकाकर उनके मैं चले आया, कितना बड़ा अपराध मेरे से हो गया है, मैं कितना नीच व्यक्ति हूं। वास्तव में परीक्षित महाराज नीच नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि मैं इतना नीच हूं और इस तरह से अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझ रहे हैं, और इतना तुच्छ होते हुए वो कह रहे हैं कि मुझे इतना सौभाग्य की प्राप्ति हो गई है कृष्ण कथा सुनने के लिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो अगर परीक्षित महाराज अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, तो हमें अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझना चाहिए जब हमें कृष्ण कथा का श्रवण करने का मौका मिलता है। तो हालांकि शरीर कष्ट दे रहा है, मन कष्ट दे रहा है, मन भागे जा रहा है घर की ओर कि वहां प्रसाद इंतजार कर रहा है, मन कह रहा है कि यहाँ हमारे संधियों में दर्द हो रहा है, किसी भी तरह बैठेंगे ऐसे बैठेंगे वैसे बैठेंगे दर्द हो जा रहा है, और ये महाशय बोले जा रहे हैं, लेकिन शरीर को कष्ट दिए बिना, मन को कष्ट दिए बिना, इस अमृत का पान नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बहुत कष्ट सहन कर ले तो हमें बहुत फायदा होगा। इसको तपस्या कहते हैं, तपो दिव्यम। तो इस तरह से जब परीक्षित महाराज का प्रश्न सुना सुखदेव गोस्वामी ने, तो उस समय उनकी क्या दशा हुई, यहां पर सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। इत्थं स्म पृष्टः सतु बादरायणे तत्स्मारितानन्तरिताखिलेन्द्रियः कृच्छ्रात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशेशने प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तम। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, इत्थं स्म पृष्टः। इत्थं मतलब इस बात को, इस तरह से। स्म स्म मतलब थोड़े समय पहले, पूर्व काल में जब ऐसे प्रश्न किया गया सुखदेव गोस्वामी को, तो उनकी क्या हुई, बादरायणी ही, बदरायण मतलब व्यासदेव, और बादरायणी मतलब उनके पुत्र अर्थात सुखदेव गोस्वामी। इथम स्म पृष्ठ सतु बादरायणी ही, तो पूर्व काल में, भूत काल में जब ऐसा प्रश्न किया गया सुखदेव गोस्वामी से, तो उन्होंने क्या किया, तत् स्मारित अनंत। अनंत मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम है। स्मारित तुरंत कृष्ण का स्मरण करने लगे, और जैसे ही कृष्ण का स्मरण करने लगे तो क्या हुआ, हृत अपने आनंद में खो गए, उनके हृदय में दिव्य आनंद उभर आया, और ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति करते करते अपने आप को खो बैठे। और ऐसे आनंद की अवस्था में क्या हुआ, अखिल इंद्रिय, उनकी बाहरी इंद्रियां काम करने बंद कर दी, स्तब्ध हो गए, वो कुछ कह नहीं पाए, बोल नहीं पाए, कार्य कुछ कर नहीं पाए। और फिर क्या हुआ, पुनः लब्ध बहिर्दृशि ही, फिर से अपने आप को वो संभल गए, अपने आप को संभाल लिया, और उनकी इंद्रियों को फिर से बाहर की जो विषय हैं उनसे संपर्क फिर से स्थापित कर दिया। क्योंकि जब हमारी बाहरी इंद्रियां काम करती हैं, इसका मतलब इंद्रियों के विषय से उनका संपर्क होता है। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, इसका मतलब ये बाहरी इंद्रियां स्पर्श कर रही हैं विषय से। हमारी दृष्टि के लिए, हमारी आंखों के लिए आपके रूप, अलग अलग रूप ये विषय है, और आपके नेत्रों के लिए हमारा रूप ये विषय है। उसी तरह से आपके कर्णों के लिए हम जो बोल रहे हैं वो विषय है, आशा करते हैं कि है। तो जब आपके कर्ण का संबंध आप इस वाणी से लगाते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बाहरी इंद्रियां काम कर रही हैं। जब आपका मन भटक जाता है, कहीं और चले जाता है, तो आपके बाहरी इंद्रिय अर्थात कर्ण का स्पर्श इस ध्वनि से टूट जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी भाव विभोर होकर उनकी सारी इंद्रियां बाहर के विषयों से कट गईं, कोई संबंध नहीं था, बाहर की कोई आवाज नहीं जा रही थी, बाहर की कोई दृष्टि नहीं, बाहर की कोई विचार नहीं, कोई स्पर्श नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर उन्होंने सोच लिया कि अरे ऐसे तो नहीं चलेगा, परीक्षित महाराज को अभी जल्दी जल्दी से भागवत कथा खत्म करना है, उनकी मृत्यु का समय आ गया, अब मैं ऐसे भाव विभोर होता गया तो बेचारे परीक्षित महाराज का क्या होगा, श्री राधा गोकुलानंद की। तो इस तरह से परीक्षित महाराज सोच रहे थे कि कई तरह के ऋषि मुनि भी वहां एकत्रित थे, तो सबके सामने ऐसे भाव विभोर होना अच्छा नहीं है। ये गौड़ी वैष्णव आचार्य भी समझाते हैं कि वास्तव में ऐसे भक्ति के लक्षण बाहर से प्रकट करना, ये गौड़ी वैष्णव परंपरा में ठीक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किए, लेकिन इनकी नकल नहीं कर सकते। जितना हो सके बड़े बड़े हमारे आचार्य रहे, उन्होंने हमेशा अपने भाव को अपने अंदर ही अंदर बना के रखा, कभी भी इसका प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन जो लोग झूठी तरह से ऐसा प्रदर्शन करते हैं उनको सहजीय कहते हैं। सहजी मतलब जो भक्ति मार्ग को बहुत सहज समझते हैं। इसलिए भावना हो या न हो, ज्यादातर नहीं होती है, फिर भी ऐसे झूठे झूठे आंखों में आंसू लाते हैं और फिर हाय हाय करके कुछ न कुछ ऐसे करते हैं, शरीर में कंपन लाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ऐसे आंसू से सारे वेदों के सिद्धांत धुल जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसा रोना धोना ये वास्तव में ये आध्यात्मिक भाव नहीं है। रोना ज्यादा कठिन नहीं है संसार में, सुबह से शाम तो लोग रो ही रहे हैं, है ना। किसी व्यक्ति के पास ये समस्या है, वो समस्या है, पैसे नहीं है, बीमारी है, ये है वो है, घर में कोई बात नहीं सुनते, ऐसा है, इनकम टैक्स की परेशानी, वो परेशानी, सुबह से रात तक रोते ही रहते हैं लोग। आंसू बहाना कोई बड़े काम नहीं है। तो कृष्ण के लिए आंसू बहाना ये कोई साधारण बात नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग ही ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हमें सहज भाव कभी नहीं लाना चाहिए। हमें हमेशा समझना चाहिए हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्यों ने हमें को सिखलाया क्या है, उसका स्मरण करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत जल्दी से अपने आप को उन्होंने संभाल लिया और फिर क्या कहने लगे, प्रत्याहतम भागवतोत्तमोत्तम। फिर धीरे धीरे से जवाब देने लगे। ऐसा सूत गोस्वामी कहते हैं, शौनक ऋषि नैमिषारण्य में एकत्र हुए, सारे ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए सूत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे थे, इसलिए सूत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। तो वो शौनक ऋषि से बात कर रहे हैं और शौनक ऋषि को भागवत उत्तम उत्तम कहते हैं। हे भागवत, भागवत मतलब भक्त, उत्तम भागवत मतलब सबसे ऊंचा भागवत, और उत्तम भागवत के में से उत्तम जो भागवत है वो है भागवत उत्तम उत्तम। तो सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को भागवत उत्तम उत्तम कह रहे हैं। तो देखिए ये श्रीमद् भागवत की जो का संवाद है, ये कृष्ण कथा के जो चर्चा विचार विमर्श होते हैं हमेशा महाभागवतों के बीच में होते हैं। हम यहाँ देखते हैं श्रीमद् भागवत में पूछने वाले भी योग्य व्यक्ति होते हैं, जवाब देने वाले भी योग्य व्यक्ति होते हैं, जैसे विदुर और मैत्रेय दोनों शुद्ध भक्त, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज दोनों शुद्ध भक्त, शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी दोनों शुद्ध भक्त, युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि दोनों शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्तों के बीच में वार्तालाप है, ये है कृष्ण कथा। इनके अलावा और कोई कृष्ण कथा नहीं कर सकता। मच्चित्ता मत्कथ प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। कृष्ण भगवान कहते हैं यही तो मेरे भक्त का लक्षण है कि जो हमेशा मेरे बारे में कथा कहते रहता है, जो मेरे बारे में हमेशा सुनना चाहता है, बोलना चाहता है, वो मेरा भक्त है। तो अगर कोई प्रश्न करे कि भगवान का शुद्ध भक्त कौन होता है, क्या परिभाषा है, कई परिभाषा है, लेकिन सबसे पहले ये है उसके लक्षण क्या होते हैं, जो हमेशा कृष्ण के बारे में ही बोलता है, कृष्ण के बारे में ही सुनता है और कृष्ण के बारे में और कृष्ण के अलावा कुछ जानता ही नहीं है, वो है शुद्ध भक्त। और ऐसे भक्तों के लिए बनाया गया है श्रीमद् भागवत। तो ये हम बात सुनेंगे तो हम निराश हो जाएंगे कि हम तो ऐसे भक्त नहीं हैं, हमें तो जंघाएं आती रहती हैं भागवत क्लास में, तो हमारा क्या होगा। निराश होने की बात नहीं है, भले हम सुखदेव गोस्वामी जैसे और सूत गोस्वामी उस स्तर में न हो, लेकिन अगर हम उनके जय पद चिन्हों में चलना चाहते हैं, उनके तरह से शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं हृदय से, फिर भी हमारे लिए श्रीमद् भागवत है, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया और जैसे ही प्रश्न किया तो मान लीजिए कि सुखदेव गोस्वामी के अंदर भाव के लहरें उत्पन्न हो गई, जैसे जिस तरह से एक पेट्रोल में आप दिया सलाई लगाते हैं, मैचस्टिक लगाते हैं, किस तरह से अग्नि तुरंत उत्पन्न हो जाती है। तो अग्नि कहां से आई, वो पेट्रोल में वो अग्नि है, लेकिन इस अग्नि को केवल प्रज्वलित करने के लिए कोई ना कोई एक निमित्त चाहिए, कारण चाहिए, सही बात है। जैसे लकड़ी में, लकड़ी के भीतर अग्नि है ना, है कि नहीं है, केवल उस अग्नि को बाहर लाने के लिए कोई निमित्त चाहिए, कारण चाहिए। उसी तरह से शुद्ध भक्त के हृदय में हमेशा कृष्ण प्रेम रहता है, वो बहुत गूढ़ भाव रहता है और उसको बाहर निकालने के लिए कोई निमित्त चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा कृष्ण के बारे में, भर 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 सुखदेव गोस्वामी के भाव बाहर निकल आए। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए निमित्त इत्यादि कई हैं, जैसे कृष्ण की बांसुरी। जब ब्रजवासीगण खास करके गोपियां कृष्ण की बांसुरी सुनते थे तो तुरंत सब कुछ छोड़कर भाग जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे बिल्कुल। कहा जाता है कि गोपियां अपने बाहरी देह को भूल जाती थी। कोई गोपी जो है वो अपने बच्चे को खिला रही थी तो भोजन कहीं और, भोजन से भोजन हाथ में भोजन था, बच्चे को खिलाने के बजाय किसी अपने ससुर को खिला दिया। और कोई महिला सोच रही थी कि मुझे जाके अब बाहर कृष्ण की बांसुरी सुननी चाहिए, तो ऊपर का कपड़ा नीचे, नीचे का कपड़ा ऊपर पहन लिया। अब बिल्कुल बाहरी संसार में क्या चल रहा है बिल्कुल पता नहीं चला, भाव विभोर हो गए बिल्कुल। उसी तरह से कृष्ण जब बाजा बजाते हैं, अपने भैंस का सींग का बनाया हुआ बाजा, हमेशा ग्वाल बाल लोग ले जाया करते थे, उसको जो आवाज ध्वनि सुनते थे तो भाव विभोर हो जाते थे। और कारण और निमित्त हैं, जैसे कृष्ण के दिव्य शरीर का सुगंध, या तो फिर उनके पदचिन्ह, जैसे अक्रूर जब वृंदावन जा रहे थे मथुरा में तो रमण रेती में उन्होंने पदचिन्ह देखे, वहीं पर भाव विभोर हो गए। तो ये एक निमित्त था उनका भाव प्रकट कराने के लिए। और कोई व्यक्ति भक्त जो होते हैं, बरसात के मौसम में एक नए घने बादल को देखते हैं तो कृष्ण की कांति याद आ जाती है, भाव विभोर हो जाते हैं। तो ऐसे कई लीलाएं हैं शुद्ध भक्तों के, जैसे कि आपको पहले मुकुंद दास का वर्णन भी किया था। मुकुंद दास एक वैद्य थे, चैतन्य महाप्रभु के नित्य भक्त थे, नित्य पार्षद। जब वो नवाब के पास गए उनका इलाज करने के लिए, तो उस समय नवाब का कोई नौकर आके मोर पंख से नवाब को हवा दे रहा था, और उस मोर पंख को देखकर तुरंत ये निमित्त बन गया, कारण बन गया। तुरंत मुकुंद दास को कृष्ण का स्मरण आया और कृष्ण का स्मरण करते करते भाव विभोर होकर बेहोश हो पड़े और उस पलंग से नीचे गिर पड़े। और नीचे गिर पड़े तो नवाब बड़े हताश हो गए कि ये क्या हो गया, हैरान होकर उसे उठाया, मुकुंद दास को पूछने लगे क्या बात है। तो कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे दौरा पड़ता है बीच बीच में, तो ये दौरा हो गया मुझे। लेकिन नवाब बड़े बुद्धिमान थे, जानते थे कि ये दौरा नहीं, ये तो कृष्ण प्रेम का लक्षण है। हालांकि वो मुसलमान थे, फिर भी जानते थे इस बात को। और एक भक्त थे जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। ये पुंडरीक विद्यानिधि वास्तव में कृष्ण लीला में राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज थे। चैतन्य लीला में ये पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में आए। जब वो नवद्वीप में आए तो एक विषयी का रूप धारण करके आए। विषयी मतलब कौन? जो भोग में रुचि लेता है। लेकिन वो थे बड़े महाभागवत, और जब पहले नवद्वीप में आए तो केवल मुकुंद इस बात को जानते थे। तो एक बार मुकुंद ने सोचा कि मैं गदाधर पंडित को पुंडरीक विद्यानिधि के पास पे ले जाऊं। जब वो ले गए और उनके घर में प्रवेश किया तो क्या देखा उन्होंने कि यहां पुंडरीक विद्यानिधि एक आराम कर रहे शैया पे, ऐसे शैया जिसमें रेशम के कपड़े हैं और जिसमें गद्दी इतनी मोटी मोटी है और हर जगह पे तकिया रखे हुए हैं रेशम के, और सब ऊपर ऐसा सब ऊपर भी रेशम के सारे आभूषण है, अलंकार हैं, और वो पान चबा रहे हैं और पान थूकने के लिए जो है सुंदर सा वहाँ एक पात्र है, और तीन चार नाव नौकर चाकर हैं, और गुलाब है, सूंघ रहे हैं नवाब की तरह। गदाधर पंडित के मन में संशय हुआ कि अरे कैसे व्यक्ति के पास ले आए हमें मुकुंद, भले ये कैसे शुद्ध भक्त हो सकता है। मुकुंद ने गदाधर पंडित के हृदय की बात जान ली। तो मुकुंद ने क्या किया, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का एक श्लोक बहुत मधुर रीति से उच्चारण करना शुरू कर दिया, जिसमें जिसका अर्थ ये है कि वो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पूतना एक भयंकर राक्षसी थी
और उसको छोटे छोटे बालकों का खून पीना पसंद था और हमेशा पुतन का कार्य ही ये होता था कि कहाँ है छोटा बालक जिसका खून मैं पी सकूं, क्योंकि राक्षस जो होते हैं वो खून पीते हैं ना मनुष्यों का। लेकिन वही पूतना जब श्री कृष्ण को स्तनपान कराने के लिए आई तो कृष्ण ने उनका स्तनपान किया और उनका उद्धार भी कर दिया और उनको अपने धाम में भेज दिया। ये है भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु। तो ये श्लोक का वर्णन किया तो गदाधर जो पुंडरिक विद्यानी देव सुना और सुनते ही अपना पान सब बंद हो गया और उनके अंदर सारे अष्ट सात्विक विकार जो है वो प्रकट हुए और इतनी तीव्रता से प्रकट हुए, उनके आंखों से आंसू, शरीर में कंपन और रोंगटे खड़े हो जाने, गला गदगद हो जाना, सारे आठों तरह के जो लक्षण होते प्रकट होने लगे और वो अपने पलंग से गिर पड़े, हाथ पैर इधर उधर मारने लगे, अपने सारे कपड़े फाड़ दिए और सारे जो भी पलंग था वो चूर।